हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक क्रमांक 10। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। इन श्लोकों में भगवान अष्टांग योग के अंगों का विवरण करेंगे, तो उसके बारे में चर्चा की जाएगी। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि योगी निराकार पर ध्यान नहीं करता है, शून्य पे कहीं ध्यान नहीं किया जा सकता। यहाँ स्पष्ट है परमेश्वर पे ध्यान करना है, भगवान कृष्ण के ऊपर, भगवान विष्णु के ऊपर। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है ध्यान में स्थित होकर के योगी भगवान योगी जन जो है वो भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में, कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। क्यों? क्योंकि यहां बता रहे हैं मन और आत्मा, मन को शरीर मन और आत्मा को भगवान में लगाए रखना, मतलब अपनी चेतना को लगातार भगवान में लगाए रखना। जब हम अपने इंद्रियों से कुछ कार्य कर रहे हैं तो भी वो कार्य चेतना की शक्ति के द्वारा ही होता है। तो इस कारण से अगर हम भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं तो इसका अर्थ है, इसी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। आप लोगों को पता होगा, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि शेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत मशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। उनकी प्रभा मतलब उनके दिव्य शील से निकलने वाली कांति को ब्रह्म कहा जाता है, जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड, आध्यात्मिक ब्रह्मांड और भौतिक जगत स्थित रहते हैं। तो ये ब्रह्म जो है ये भी भगवान से अभिन्न है, जिस प्रकार से सूर्य की किरण जो है वो सूर्य से अभिन्न होती है। तो अगर कोई इस पर भी ध्यान करता है तो भगवान की अंश मात्र उसको अनुभूति होती है, और ये अनुभूति होती है सत के रूप में, शाश्वत की अनुभूति, शाश्वतता की अनुभूति ब्रह्म अनुभूति के रूप में होती है। अंतर्यामी परमात्मा जो है वो उपद्रष्टा अनुमंता की तरह सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा का साक्षात्कार करता है उसका परमात्मा के प्रति सेवा की भावना नहीं होती है। तो वहां पे सद और चिद यानी कि शाश्वतता और ज्ञानमयता का अनुभव होता है, लेकिन जब भगवान से साक्षात्कार होता है तो शाश्वतता, ज्ञानमयता और आनंदमयता, इन तीनों का अनुभव होता है। तो ये आंश इस प्रकार से ये जितने भी साक्षात्कार हैं आंशिक साक्षात्कार हैं कृष्ण भावना के। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। अपरोक्ष रूप से मतलब सीधे वो भगवान की सेवा नहीं करते हैं अपितु भगवान के एक विस्तार की सेवा कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित होते हैं। जो कोई व्यक्ति सूर्य की किरणों का अध्ययन कर रहा है, कोई व्यक्ति सूर्य के गोले का अध्ययन कर रहा है और कोई व्यक्ति सूर्यदेव का पूजा कर रहा है, सूर्यदेव से मित्रता कर रहा है, तो जो व्यक्ति सूर्यदेव से मित्रता कर रहा है वो सूर्य की किरणों के बारे में और सूर्य के गोले के बारे में अपने आप ही जान जाएगा। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, भगवान को साक्षात्कार करता है, वो ब्रह्म और परमात्मा दोनों की ही अनुभूति कर लेता है। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सकें। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति में रुचि नहीं भी लेता है और ब्रह्मोपासना और परमात्मा की परमात्मा योग में उसकी रुचि है, तो उसमें उसे लगे रहना चाहिए ताकि धीरे धीरे उसकी चेतना की शुद्धि हो और अंततोगत्वा एक दिन वो भक्ति के पथ पर आ सके। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भुलाना चाहिए। इस प्रकार से अपने मन को एक योगी, अष्टांग योगी जो है वो नियंत्रित करते हैं। जो मन में भोगों की इच्छाएं हैं उसका परित्याग करके उसको बार बार वो मन को भगवान में लगाते हैं। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। ये हमने पहले भी चर्चा करी थी और इस चैप्टर में बार बार आएगा कि मन एक दीपक की तरह है और तभी तक जलता है जब तक उसमें तेल दिया जाता है। तो जो हम इंद्रिय भोग करते हैं इंद्रियों के द्वारा, इसके द्वारा मन को तेल मिलता है। प्रायः हम मन पे को धिक्कारते हैं कि मन हमारा बड़ा गड़बड़ है, मन में भोग के विचार हैं, लेकिन वो भोग के विचार हमारे इंद्रिय पूर्वगत किए गए इंद्रिय भोगों के द्वारा ही आए हैं। तो इसलिए मन को एकाग्र में करना है तो अब प्रयास करना चाहिए कि और कोई इंद्रिय तृप्ति के कार्य हम ना करें, स्पेशली ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, क्योंकि इससे इनपुट मिलता है। तो फिर धीरे धीरे करके मन एकाग्र हो जाता है। जिन वस्तुओं का, जिन दृश्यों का को देखा नहीं है, जिन बातों को सुना नहीं है, वहां पे मन जाएगा नहीं। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए बार बार कि भगवान के संबंध में ही अपने इंद्रियों को उपयोग करें। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े। यही चर्चा हम अभी कर रहे थे कि जो भगवान विषयक वस्तुएं हैं उसको, उसमें अपने इंद्रियों को प्रवृत्त करना है, और जो भगवान से विषय वस्तुएं नहीं है उनमें से अपने चित्त को हटाना है। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा लें। ये बात भक्तों पर भी लागू होती है। देखिए, इस जगत में हम अकेले आए हैं और अकेले चले जाएंगे, और ना तो हम यहाँ पे कुछ लेके आए हैं, ना तो हम कुछ यहाँ से लेके जाएंगे। तो इसमें, इसके बीच में अगर हमारा परिग्रह भाव हो जाता है, यानी कि हम सोचते हैं कि हम कुछ इकट्ठा कर लेंगे, कुछ ले लेंगे, कुछ रख लेंगे, तो ये बहुत बड़ा अज्ञान है। और इसके द्वारा ये भावना बढ़ जाती है कि मैं इस जगत का हूँ और इस जगत का को भोगूंगा, या इस प्रकार की भावना, और ये बहुत बड़ा अज्ञान का जनक है जिससे हमारी कृष्ण भावना नष्ट हो जाती है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति केवल शरीर निर्वाह के लिए या फिर उसकी जो भक्ति है, भक्ति करने के लिए जितना आवश्यक है वो उतना ही संग्रह करते हैं। इस चीज को शिला रूप गोस्वामी भी बोलते हैं अत्याहार प्रयासश्च, बहुत अधिक इकट्ठा करना और फिर उसके लिए प्रयास करना, इन सब से हमारी भक्ति का नाश हो जाता है। और एक और बात है कि क्योंकि हम लोग भौतिकतावादी लोगों के साथ में रहते हैं, स्पेशली गृहस्थ लोग, तो आसपास के लोग इस परिग्रह भाव से पूरी तरह से दूषित हैं। तो अगर हम उनसे बहुत अधिक चर्चा करेंगे तो उनके मन में जो कह सकते हैं ये जो परिग्रह का भाव है, इकट्ठा करो इकट्ठा करो इकट्ठा करो, तो वो हमारे हृदय में भी आ जाएगा सुनने के माध्यम से। हम भी डर के मारे इकट्ठा करने के चक्कर में लगेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आप देख सकते हैं जैसे चींटी है, चींटी का पेट बहुत छोटा होता है, लेकिन सुबह से शाम तक प्रायः चींटियां सोती भी नहीं है, लगातार इकट्ठा करने में लगी रहती हैं। या फिर मधुमक्खियां भी ऐसे दिन भर इकट्ठा करती रहती हैं जबकि खाना बहुत कम होता है। तो ये सोचना चाहिए कि मेरा मानव जीवन बहुत थोड़ी देर के लिए मिला है, जिस उद्देश्य के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए, उसमें उसको अधिक से अधिक लगाना चाहिए, और बाकी इकट्ठा करने के काम में हमें कम से कम लगने का प्रयास करना चाहिए। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव के लिए लेशमात्र स्थान नहीं होता। आत्मा का उत्सर्ग मतलब आत्मा का उत्थान। कृष्ण भावना में अपने आप ही व्यक्ति परिग्रह की भावना से मुक्त हो जाता है, भले ही वो कितना भी इकट्ठा करे, लेकिन उसकी चेतना ये रहती है कि सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण की हैं, और ये उन वस्तुओं को वह भक्त केवल इसीलिए इकट्ठा कर रहा है क्योंकि कृष्ण की सेवा के लिए आवश्यक है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के पास एक भक्तों ने कुछ पोस्टर दिखाया जिसमें किसी व्यक्ति के गुरु हैं और उनको कोई धन दिया जा रहा है, और उनका फोटो ऐसे है कि नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरा एक ऐसा फोटो बनाओ जिसमें मुझे धन दिया जा रहा है और मैं बोलूंगा हाँ मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो क्या प्रभुपाद जी को अपने लिए धन चाहिए? नहीं, प्रभुपाद जी को अपने लिए धन नहीं चाहिए था, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के प्रचार के लिए धन चाहिए था। तो भक्त इस भावना से पूरी तरह से मुक्त होता है अगर जितनी मात्रा में वो शुद्ध हो जाता है कि इस जगत की कोई भी वस्तु मेरी नहीं, लेकिन जो वस्तुएं भगवान की सेवा में उपयोग हो सकती हैं उनका उनको एक भक्त स्वीकार करता है। जैसे एक सिंपल सी बात है, एक स्मार्टफोन कोई फोन की एक ब्रह्मचारी को कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी स्मार्टफोन की कोई जरूरत नहीं है अपनी भक्ति करने के लिए, लेकिन इसका प्रयोग हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं, हम प्रचार के लिए करते हैं, तो इसका उपयोग हम भगवान की सेवा के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये भावना नहीं होनी चाहिए कि ये फोन मेरा है तो क्या इसको हमें कचरे में डाल देना चाहिए। नहीं, ये फोन मेरा नहीं है, ये भगवान का है और इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। इसे युक्त वैराग्य कहते हैं, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे हम। श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं, अनासक्तस्य विषयान यथाहारम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है तभी वह परिग्रहत्व को से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जगत की वस्तुओं में व्यक्ति आसक्त नहीं है, आसक्ति उसकी भगवान कृष्ण और उनकी सेवा में होती है। ये भक्ति करने से, हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से ऐसी चेतना का निर्माण या विकास वो अपने आप होने लगता है, और अगर हम श्रवण भी करें तो, क्योंकि ये हमारी मूलभूत चेतना है। ईशा भाषा मिदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्ते न भुंजिता मां गृधा कस्य सिद्धनम। ये बात ईश उपनिषद में भी आती है कि इस जगत में जो कुछ भी है वो भगवान का है, इसलिए उनको अर्पित करके व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। तो वस्तुतः बाह्य रूप से लगेगा कि भक्तों में इतना वैराग्य नहीं है जितना किसी कोई बाबा में होगा जो जंगल में रह रहे हैं बिना कपड़ों के या ऐसे करके, लेकिन ये बात समझ में आना चाहिए कि हम शरीर जिसमें बैठे हैं क्या उसको भी त्याग देंगे? वो शरीर भी तो हमारा नहीं है। तो इसलिए कपड़ों को त्यागना ये कोई सही त्याग नहीं है। सच्चा त्याग ये है जब व्यक्ति प्रोप्राइटरशिप स्वामित्व के भाव को त्याग दे। जब मैं सोचूंगा कि वस्तुएं मेरी हैं तो मैं ये भी सोचूंगा कि ये वस्तुएं मेरे भोग के लिए हैं, और यदि मैंने ये मैंने इस भाव को त्याग दिया कि वस्तुएं मेरे भोग के लिए हैं तो मैं ये भी नहीं सोच रहा हूं कि ये वस्तुएं मेरी हैं। देखिए, अगर जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं गृहस्थों को अपना 50% धन कम से कम भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो बहुत से लोग और हो सकता है बहुत सारे गृहस्थ भक्त भी इस बात से को सुन करके परेशान हो जाएं, कह रहे ऐसे कैसे हो गया, हम 50% में कैसे अपना जीवन गुजारेंगे। लेकिन देखिए, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये हमारे मन को कर्मात्मक बनाएगा, हमारे कर्म का बंधन हमारे हृदय में बढ़ जाएगा। 50% अपना भगवान की सेवा में उपयोग करें, घर में हर क्रिया ऐसे हो कि वो भगवान संबंधित हो, तो बड़ी आसानी से हमारी जो 50% है वो भगवान की सेवा में उपयोग हो सकता है। और जब हम ऐसा करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तो अपने इंद्रियों का प्रयोग, अपने धन का प्रयोग अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा में करते हैं तो फिर धीरे धीरे हम वैराग्य के स्तर पर आगे बढ़ेंगे और योग की पद्धति में भी आगे बढ़ेंगे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता, वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है, यानी कि भक्ति में जो सहायक है उसको स्वीकार कर सकता है। जैसे प्रभुपाद जी डिक्टाफोन यूज करते थे, उसी की वजह से सारा कुछ आज ये रिकॉर्डिंग हुआ है, आज से 40-50 साल पहले। तो ये मुझे बता रहे थे हमारे एक भक्त कि इस्कॉन के भक्त बहुत शुरुआत में ही कंप्यूटर का उपयोग करना शुरू कर दिए थे, जब कंप्यूटर बिल्कुल नया नया आया था। तो ऐसा नहीं है कि भक्त लोग जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग नहीं कर सकते, जो भी वस्तु आती है उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उनका भाव ये होना चाहिए कि वो कृष्ण की सेवा के लिए है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है क्योंकि वह दिव्य होता है, और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण वह सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। ये भी समझ में आना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति अकेला रहता है। तो कहेंगे नहीं, आप तो भक्तों के संग रहते हैं, आप सब लोग हमेशा भक्तों के साथ जप करते हो, कीर्तन करते हो, तो अकेले कैसे रह रहे हैं? अकेले ऐसे रह रहे हैं कि अकेले रहने का अर्थ है भौतिक दूषित चेतना से, चेतना वाले संग से दूर रहना। इसका मतलब ये नहीं कि निश्चित कि हम अकेले रहें, फिजिकली अकेले रहें। तो अकेले रहने का मतलब है हमेशा भक्तों के संग में रहे और उनके उनके संग ही संग करे और कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे, अनुशीलन करे। इस प्रकार से हम भौतिक दूषित करने वाली चेतना से बच पाते हैं। हरे कृष्ण।